दादी जी हमारे बीच में हैं। कहते हैं वो आ गए जिनका इंतजार था, आए हम खुशियों के दीप जलाएं। दादी जी के स्वागत में सब लोग जोरदार तालियां बजा लें। हम सब दादी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे बीच में। बैठेंगे सभी अपने स्थान पर। परम सौभाग्य है हम सबका जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, नयन प्यासे रहते हैं। आज परम आदरणीय दादी जी हम सबके सम्मुख हैं, हमारे बीच हैं, हमें तृप्त करने के लिए, वरदानों से हमारी झोली भरने के लिए। बहने अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं हम सबकी तरफ से दादी जी का। हम भी जोरदार करतल ध्वनि से दादी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत ही सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं कि अध्यात्म जीवन में उतर आए और उनका जीवन भी एक प्रेरणा का स्रोत है। जब वो स्टडी कर रहे थे तभी उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान, और अध्यात्म के पथ पर चलते हुए अपनी स्टडी भी उन्होंने पूरी की, जॉब भी किया और पश्चात यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाएं देते हुए यहाँ की सेवाओं को आप चार चांद लगा रहे हैं। इनका जीवन हम सबको एक बात कहता है कि अध्यात्म छोड़ना नहीं सिखाता, भागना नहीं सिखाता, लेकिन भाग लेना सिखाता है और हर कर्म में परफेक्शन हमें सिखाता है। इसलिए मन में इस बात को हम कतई ना रखें, जैसे भ्राता जी ने शुरुआत ही की थी कि अध्यात्म अर्थात हमें पर्वत या फिर जंगल या फिर नदी का किनारा याद आता है। नहीं, अध्यात्म हमें समाज में रहना, संसार में रहना, बेहतर तरीके से रहना सिखाता है और यही प्रेरणा, यही सीख ब्रह्मा कुमारियां भी हमें प्रदान कर रही हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित श्री जी के चौकियाल जी को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आदरणीय भ्राता जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो आए अपने विचार आज के सुंदर विषय पर रखें।
ओम शांति। आदरणीय दादी जी, मंच पर विराजमान डिग्निटरीज, देवियों और सज्जनों जो इस हॉल में मौजूद हैं, मैं विमानन क्षेत्र से आता हूं, एविएशन सेक्टर से, और अभी कमलेश दीदी ने बताया कि आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए भी लोग इंडिया विजिट करते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल पहली बार हिंदुस्तान में फॉरेन टूरिस्ट ने 10 मिलियन से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए, और दिस द फर्स्ट टाइम कि 1 करोड़ टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और आध्यात्मिक टूरिज्म का बहुत स्कोप है इंडिया में। इंडिया तो लीडर रहा है आध्यात्मिकता में और इसको बढ़ावा देना चाहिए, और मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी की संस्था जो है ये बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकती है। हमारे पास में ऐसे अच्छे अच्छे अबू रोड, माउंट अबू जैसे संस्थान मौजूद हैं। एविएशन सेक्टर की बात मैं करूंगा, मैंने कल भी की थी। इट्स हाईली स्ट्रेसफुल जॉब and profession, all the profession in fact in aviation sector, cockpit crew के लिए, क्योंकि ये stressful job है इसलिए उनके लिए flight duty timing limitations रखी गई है कि साहब आप इतने hours से ज्यादा की duty नहीं करेंगे, और उसके बाद अगर उनका किसी भी तरह से अगर flight delay हो गई और उनका FDTL exceed कर गया तो उनको हटा लिया जाता है, सो दैट कि उनको स्ट्रेस न हो। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको ये आध्यात्मिकता की ट्रेनिंग मीरा दीदी ने बताया है कि ऑलरेडी दे रहे हैं, पर ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये जो इंसिडेंट अभी हुई थी कि कॉकपिट क्रू पूरे एयरक्राफ्ट को संकट में डाल के बाहर आ गया, और ये तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है और उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया है, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि एक बार गलती हो गई, द कॉस्ट ऑफ मिस्टेक इज वेरी हाई इन एविएशन, क्योंकि आप 30,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं और एक भी मिस्टेक हुई तो आप गए। ऑल्दो एविएशन सेक्टर इज वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर दूसरा होता है जो ग्राउंड हैंडलिंग के लोग होते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं वो भी स्ट्रेस में रहते हैं ओटीपी के लिए, ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। और आपने देखा होगा सबको जल्दी होती है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम डिफाइंड होता है उनका कि भाई 30 मिनट्स में उनको फिर से टेक ऑफ करना है और इंजन को तैयार करना है, एयरक्राफ्ट को तैयार करना है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। और आपने देखा वो रीजन करीब 2 महीने पहले ग्राउंड हैंडलिंग जो स्टाफ था एक लीडिंग एयरलाइन का, उन्होंने मैन हैंडल कर दिया एक पैसेंजर को, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूं अगर उनको आध्यात्म की ट्रेनिंग दी गई होती तो ये चीज शायद न होती। और तीसरा मैंने बताया जिस सेक्टर से मैं आता हूं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, उसमें स्पेशली दिल्ली मुंबई जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अभी जो है दिल्ली टॉप आई थिंक टॉप 5 में आ गया है ट्रैफिक हैंडलिंग में। 1200 के करीब हम हर दिन मूवमेंट्स हैंडल करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है लोगों को। हमने इसकी वजह से उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स भी कम कर दी है, 6 आवर्स किया है। उसमें भी एयर मिसेज होते हैं, अगर आप तनाव में हैं तो एयर मिसेज के चांसेस हो सकते हैं। एयर मिसेज का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट का क्लियरेंसेज अगर जो रिक्वायर्ड है से 2000 फीट अप सर्टेन लिमिट एंड 1000 फीट उससे कम हो गया तो उसको हम एयर मिस बोलते हैं। और अगर वो मर्जिंग टाइप का ट्रैफिक हो जाता है, अगर ऐसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं, एंड नियर मिस बोला जाता है उसको एक्सीडेंट माना जाता है। तो इस तरह के टेंशन में रहते हैं, उसके लिए मैं समझता हूं ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड राजयोग मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इस तरह की चीजें हमारे यहां होनी चाहिए। फिर मैं समझता हूं कि हर एक के लिए, हर प्रोफेशन में ये जरूरी है कि लोग स्पिरिचुअलिज्म की को फॉलो करें, क्योंकि इससे आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके मैं आपको अपना एक एग्जांपल भी दे सकता हूं। इनफैक्ट परसों जब आपने वो देखा होगा एक फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट ऑन उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है और मैं उसको हेड करता हूं उस डिपार्टमेंट को। मेरे पास में सिर्फ 5 लोगों की टीम है और हम बड़े मेहनत से हम लोग वो काम कर रहे थे, लेकिन सडनली हमें बोला गया कि नहीं साहब 24 तारीख को आपने अवार्ड करने हैं सारे रूट्स। तो हमको 86 प्रपोजल्स अवार्ड करने थे, मतलब 86 टेंडर थे एयरलाइंस को जो हमने अवार्ड करने थे। 4 बजे का टाइम हमें दिया गया था, लेकिन हमें 2 दिन पहले ही बोला गया था ये चीज की साहब आपको ये करनी है। तो लास्ट मोमेंट पे हम जब अपने प्रिंट्स निकाल रहे थे अवार्ड लेटर्स के, हमारा कंप्यूटर फेल हो गया, वायरस आ गया उसमें, और वहां पर डिग्निटरीज पहुंचने वाले थे, मिनिस्टर्स एंड ऑल, और हम बड़े संकट में थे। मेरी ये 6-7 साल की जो ट्रेनिंग ब्रह्म कुमारीज में हुई है, मैं धन्यवाद करूंगा ब्रह्म कुमारीज का, और स्पेशली लोधी रोड ब्रांच का, सेंटर का, जहां पर गिरिजा बहन और पीयूष जी यहां मौजूद हैं, वो उसको चलाते हैं। मेरी वो ट्रेनिंग थी कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर गया, और 4 बजे वो होना था, मैं 3:30 तक हम लोग मैनुअली करके सब कुछ करके हम वहां भागे गए मीडिया सेंटर, और हम वो कर पाए। अदरवाइज गंभीरता इतनी थी कि वहां पर डिग्निटरीज हैं, कुछ भी हो सकता था, और हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो हम किसी तरह मैनेज कर पाए। हमने बाद में जो एयरलाइंस हैं उनके साथ में डिस्कशंस भी किए कि भाई अगर कोई गलती वलती है तो आप कल हमारे पास में आ जाइएगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से ब्रह्म कुमारी संस्थान का कि इस तरह की ट्रेनिंग वो देते हैं अध्यात्म के ऊपर, और स्पेशली मैंने बहुत कुछ पाया है इस संस्थान से। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया चौकियाल जी, आपके अनुभव ने हम सबको भी बहुत प्रेरित किया है कि सचमुच अध्यात्म और मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जो मन को शांत रहता है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे मेडिटेशन के ऊपर, योग के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, और उन्होंने ये पाया है कि जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य दक्षता, उनकी व्यावहारिकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। इसलिए कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने यहां मेडिटेशन सेंटर भी खोल लिए हैं। तो हमारी देश की जो निधि है उस निधि का उपयोग विदेशी कर रहे हैं। अब वक्त है कि हम भी उस निधि का सुंदर उपयोग करके अपने जीवन को सुंदर और सार्थक अवश्य बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया चौकियाल जी आपका। हम एक बार करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद करें। तो कहा जाता है कि जितना आप तालियां बजाते हैं उतना आप स्वस्थ रहते हैं। अपना दोनों हाथ सामने करेंगे सभी, दोनों हाथ सामने करें और इसे पूरी तरह स्ट्रेच करें, खोलेंगे, खींचें जितना हो सकता है। ओके, अब आप तालियां बजाएं जितना तेजी से आप बजा सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्वे है कि यदि आप 3 मिनट ऐसी तालियां बजाते हैं तो आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अभी 3 मिनट ना सही, किस्त किस्त में आप 3 मिनट अवश्य बजाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी को अपनी शुभकामनाएं हम सबको देने के लिए। आदरणीय भ्राता जी बाल्यकाल से ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और इस परिसर में ही, ईश्वर की गोद में ही आपका बचपन पला है, या कहूं आप ईश्वर की गोद में ही खेले हैं। 1972 में आपने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित कर दिया। आप वाइस चेयर पर्सन हैं ग्राम विकास प्रभाग के। आपके नेतृत्व में शाश्वत यौगिक खेती, एक नई खेती जो पूरे भारतवर्ष को तक आप पहुंचा रहे हैं, एक ऐसी खेती जो सचमुच वरदानी है और आने वाले समय के लिए सचमुच मुझे लगता है कि सारा संसार इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि ये चीज एक नवीनतम विधि है। उसके माध्यम से जो आपने अनुभव प्राप्त किए हैं, सबने आध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित करते रहते हैं। तो हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय राजू भाई जी का।
ओम शांति। हम सर्वात्माओं के कल्याणकारी परम प्यारे परमात्मा की प्रिय संतान, आज की मंच पर विराजमान हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, ब्रह्मा कुमारी मीरा दीदी जी, कमलेश बहन जी, डॉक्टर प्रताप जी तथा हमारे मेहमान भाई, आज की सभा में उपस्थित आप सभी आध्यात्म प्रेमी भाइयों और बहनों, इस आध्यात्मिक परिसर में आध्यात्मिक ज्ञान लाभ लेने के लिए आप सबने समय निकाला है। हमारी एक बहुत सुंदर सुभावना यही है, आध्यात्मिकता जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाती है। बहुत सारे विचार, बहुत सारे अनुभव आप सब अभी सुन रहे थे। हम सब इस जीवन में जिस दिन से आए हैं और जब इस शरीर को छोड़ेंगे तब तक हमारी यात्रा चल रही है। हम सब जीवन में यात्रु हैं, यात्री यात्रा कर रहे हैं। हमारा स्थान भी निश्चित है, जाना भी है, आए भी हैं। यह आध्यात्मिकता हमको ये मार्गदर्शन देती है हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है और हम किस लिए आए हैं। कुछ पहेलियां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमें पढ़ाई गई, सिखाई गई, उसके आधार से ये जीवन यात्रा बड़ी सुखद, बहुत शांतिपूर्ण, आनंद में व्यतीत हो रही है। मैं आपको एक अंतर जगत की यात्रा की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हर स्थान आध्यात्मिकता से जहां जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा भी हमने सुनी है, लेकिन एक शब्द आप सबने सुना होगा, अंतर मन वाहन। चाहे आज प्लेन के वाहन की बात सुन रहे हैं, शिप की सुन रहे हैं, अनेक प्रकार के साधनों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सहजता सुगमता से पहुंच जाते हैं, लेकिन अंतर मन वाहन, और उस मन वाहन के आधार से हमें कहां पहुंचना है, आप सबके पास वो शक्ति है, वो वाहन है, सिर्फ उस वाहन को दिशा देने की जरूरत है। अगर आज वाहन चलाने वाले पायलट के पास दिशा निर्धारित न हो तो भटक जाएगा और भटका देगा। इसलिए एक तो मन को दिशा देने की जरूरत है, और दूसरा जैसे वाहन के अंदर ब्रेक बहुत जरूरी होती है, अरे ब्रेक ठीक नहीं है तो कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ब्रेक के साथ साथ मोल्ड करने की हैंडलिंग पावर भी चाहिए, हैंडल भी अच्छा चाहिए ताकि वो दिशा के अनुसार अपने आप को, अपने वाहन को मोड़ सके। और चौथी चीज है उसमें पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल या डीजल जिससे वाहन चल रहा है उसकी जरूरत है। इस अंतर जगत की यात्रा में, अंतर यात्रा में हमें भी इन चारों बातों का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि हम सब इस जीवन यात्रा के अंदर तभी सफल हो सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं, जब हम इन चारों बातों को ध्यान पर रख करके चलते हैं। एक तो आज जो सभी का मन भटक रहा है, अशांत है, दुखी है, उसका कारण है उसने उसको सही दिशा नहीं दी है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सबसे पहले हमें वो दिशा प्रदान करता है कि इस मन को कौन से संकल्प उत्पन्न करने हैं, किधर ले चलना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। लेकिन उसके लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान में पहली बात बताई गई कि आत्मा मन और बुद्धि तथा इन सभी कर्म इंद्रियों की मालिक है, जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो मन जो हमारी संकल्प शक्ति है उस पर हम संपूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं। जिधर हम इसको ले जाना चाहें, जिस दिशा में ले जाना चाहें उसको हम ले जा सकते हैं। वर्तमान समय जो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं समाज के अंदर, उसका एक मूल कारण है कि आत्मा अपने मन को सही दिशा नहीं दे पा रही है। कहीं न कहीं उस पर प्रभाव है, दबाव है, कहीं न कहीं वो झुकाव है। और मूल कारण है कि मन की दिशा ठीक न होने का कारण है उसको सही चिंतन, सकारात्मक चिंतन करने की कला नहीं आती। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सबसे पहले हमारे चिंतन धारा में परिवर्तन लाता है, और वो चिंतन धारा यही परिवर्तित होती कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये हड्डी और मांस का पुतला नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, इन कर्म इंद्रियों की, मन बुद्धि की मालिक हूं। और जब मैं अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता हूं तो उस स्वस्वरूप में स्थित होने के बाद शुभ संकल्पों की शक्ति ब्रेक का काम करती है। जो मुझे सोचना है वही सोचना है, जो देखना है वही देखना है। सोचने का, देखने का, बोलने का प्रभाव जो आज संग के कारण मनुष्य आत्माओं को लग गया है उससे उबच सकता है अगर उसे सही दिशा का ज्ञान है तो। तो आध्यात्मिकता हम सबको श्रेष्ठ संकल्प करना, श्रेष्ठ चिंतन करना, सकारात्मक चिंतन करना सिखाती है, और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि समाज का हर वर्ग इस बात को महसूस करे कि हमें अपनी चिंतन धारा को परिवर्तन करना है। जो व्यर्थ और नेगेटिव सोचने की आदत बन गई है, जो हर बात में प्रश्नात्मक बुद्धि है, उसे परिवर्तन करना है। और वो तभी परिवर्तन हो सकता है जब हम कुछ श्रेष्ठ संगत में आए, अच्छा संग करें, अच्छा साहित्य अध्ययन करें, अच्छे वातावरण में कुछ समय व्यतीत करें। तो मैं समझता हूँ इस आध्यात्मिक वातावरण के बीच में आपने महसूस किया होगा कि यहाँ नकारात्मकता का, व्यर्थ का नामो निशान भी नहीं है, और उसके आधार से ये परिसर अपने आप में ही एक बहुत शक्तियों से संपन्न है। आने वाली हर आत्मा यहाँ महसूस करती है बहुत शांति है, बहुत प्रेम है, बहुत आनंद है, और उसका मूल कारण है यहाँ के रहने वालों को ये ट्रेनिंग मिली है कि सदा सकारात्मक चिंतन करना है। तो शेष चिंतन करके, शुभ संकल्प करके, अपने व्यर्थ पर कंट्रोल करके, ब्रेक लगा करके, संकल्प को कभी शून्य नहीं मनाया जा सकता, मन को कभी मारना नहीं है, लेकिन उसको सुमन बना करके, अच्छे अच्छे विचार करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है, ये दूसरा हमारा लक्ष्य है। इसलिए मोड़ने की और ब्रेक देने की ये दोनों शक्तियां आवश्यक हैं। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन है आत्मा के पास, वो पेट्रोल का काम करता है। अच्छे अच्छे विचार क्रिएट किए जाएं, सवेरे उठते ही एक श्रेष्ठ चिंतन हो कि मैं सृष्टि मंच पर अवतरित हुई आत्मा इस शरीर के माध्यम से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आई हूँ। अगर हम सवेरे अमृत वेले पहले संकल्प में परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं, उसके साथ अपनी बुद्धि को जोड़ देते हैं, तो उसकी शक्तियाँ कार्य व्यवहार के अंदर बहुत मदद करती हैं। तो आध्यात्मिकता हमको ये सिखाती है कि सवेरे उठते ही पहले संकल्प में परमात्मा पिता के साथ मिलन मनाएं, उससे गुड मॉर्निंग करें, उसकी शक्तियों का आवाहन करें, और फिर कार्य क्षेत्र में रहते हुए श्रेष्ठ चिंतन के लिए कोई अच्छे स्लोगन्स, अच्छे वरदान, अच्छे महावाक्यों का चिंतन लें। इसलिए सवेरे सवेरे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर प्रातः काल में ये दोनों ही स्टडी कराई जाती है, एक मेडिटेशन की और दूसरा ईश्वरीय महावाक्यों को सुनने की। केवल यही दो बातें इस विद्यालय की अगर सभी अपना लें, तो सारे दिन के कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत सफल हो सकते हैं, और उनके पास इतनी संकल्प की शक्ति रहती है, और उस संकल्प की शक्ति के आधार से चिंतन के साथ उनका चरित्र अच्छा हो जाता, और जब चरित्र अच्छा हो जाता है तो उनके व्यवहार में शुद्धता, श्रेष्ठता अपने आप आ जाती है। तो आज जो हम सुन रहे थे कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, एयर है या शिप है, जहाँ पर भी हम जिस यात्रा पर जाते हैं, मुझे भी यही अनुभव होता कि अगर थोड़ा भी कोई कारण बनता है तो लोग इतना गुस्से में, इतने तनाव में आ जाते हैं, जो वहीं पर झगड़े के साथ मारपीट भी शुरू हो जाती। अभी भी मीरा बहन जी सुना रही थी, मेरा अपना एक अनुभव है। मैं दुबई से फ्लाइट से आ रहा था, बॉम्बे में मैं पहुंचा, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, कुछ डिले लेट हो गई, और लेट होने के कारण जो आगे की सभी फ्लाइट थी हम लोगों की, सब चेंज हुई, कैंसिल हुई। सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, और पहुंचते ही इतना लोगों के अंदर गुस्सा था, इतना तनाव था, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। पुलिस भी आई, सब स्टाफ आया रोकने के लिए, समझाने के लिए क्या किया जाए, ये कोई कारण बन गया इसलिए लेट हुआ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और इतना गुस्सा, इतना तनाव उस एयरपोर्ट पर, बॉम्बे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, जो चारों तरफ से लोग खड़े देख रहे थे, और सब कारोबार ठप था, कई घंटे तक ठप था। मैं तो बहुत परमात्मा की याद में बहुत साक्षी दृष्टा बन करके उदृश्य देख रहा था कि हमने कहा कारण कोई भी हो, लेकिन हमारी शांति क्यों भंग हो रही है, हम क्यों इतना अशांत हो गए, अब तो उसको कोई ठीक नहीं किया जा सकता, जो साधन मिलेगा उससे हम आगे जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति शांति, प्रेम, आनंद में जीवन व्यतीत करने का साधन है। बहुत सुखद अनुभव उस समय हम कर रहे थे, मेरे पास भी टीवी वाले आए, पूछने लगे आपको क्या तकलीफ हुई है। ना कोई भी तकलीफ नहीं, हमें कोई बात नहीं, हमारे सेंटर्स भी यहाँ पर हैं, हम शाम को चले जाएंगे फ्लाइट से, इसमें क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गए। तो उसी समय अगर हमारा व्यवहार शांत स्वरूप है, धैर्यता से परमात्मा की याद में है, तो कई आने वाली ऐसी परिस्थितियां भी समय अनुसार बढ़ती जा रही हैं और भी बढ़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि है और जनसंख्या की वृद्धि के कारण साधनों की वृद्धि है। इतने अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे कि 1200 फ्लाइट्स रोज हैंडल करना कोई सहज बात है क्या? ऐसे समय में बहुत धैर्यता चाहिए, बहुत शांति चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए, और वो शक्ति केवल परमात्मा याद से, परमात्मा के साथ मिलन से, उनके योग से ही प्राप्त हो सकती है। और अगर आप सभी अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो इसको केवल सुनना नहीं लेकिन इसका अनुभव करके देखना कि आत्मा मालिक है, जो चाहे वो सोचे, जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो देखे। अगर कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ गया तो आप स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, और स्वराज्य अधिकारी किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होता, वो बहुत धैर्यता के साथ हर परिस्थिति को पार कर सकता है और विजयी बन सकता है। ऐसी हमारी शुभकामना है कि आप सभी यहाँ से आध्यात्मिकता में प्रवीण होकर परमात्मा पिता के साथ सही संबंध जोड़ करके जाएं, तो हर कार्य क्षेत्र में सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रता जी, आपने अपने अनुभव से भी पुनः ये स्पष्ट किया कि ये कितना जरूरी हो गया है आज के दौर में कि हम अपने मन को शांत रखें। डॉक्टर्स तो ये कहते ही हैं कि मोर देन 80% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। जो भी आज तनावग्रस्त या फिर अन्य हम चीजें देखते हैं, अपने मन के विचलन की स्थिति को अध्यात्म या योग बहुत सहज कर देता है, तो क्यों ना अब हम एक कदम इस अध्यात्म के पथ पर बढ़ाएं, अपने जीवन को भी सुंदर और सुनहरा बनाएं और औरों को भी ये प्रेरणा प्रदान करें। अब हम व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम के उद्घाटन को दीप प्रज्वलन के माध्यम से करेंगे, तो मैं मंच के सभी हमारे जो अतिथिगण हैं साथ ही महानुभाव हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर सामने आएंगे। नीचे भी कुछ दीप रखे जाएंगे तो जिनके नाम दिए जाएं वो भी नीचे दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलन हमें ये याद दिलाता है कि हमें भी अपने चारों ओर की जो नकारात्मकता है, अंधकार है, उसे दूर करना है। जैसे एक छोटा सा नन्हा दीप अपने आसपास के अंधकार को दूर कर देता है, आए हम सब छोटे छोटे दीप यदि मिलकर जल उठें, अध्यात्म का दीप अपने अंदर जला लें, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जबकि सारे संसार से नकारात्मकता का अंधकार दूर हो जाएगा।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
आज इस शुभ अवसर पर परमात्मा आशाओं का दीप बनकर आए इस धरा को हम सब स्वर्ग बनाएं, आए इस धरा को हम सब स्वर्ग बनाएं। ये उन्नत दीप दीप शिखाएं जैसे आकाश को छू लेना चाहती हैं, वैसे हम भी अपने जीवन पथ पर सतत ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी आप सबके लिए कामना। और साथ ही सदा ही इन दीपों की तरह हम भी प्रज्वलित रहें और औरों को प्रकाश प्रदान करते रहें। अब वो सुंदर घड़ी जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, परम आदरणीय दादी जी के मुखारविंद से हम आशीर्वचन सुने। दादी जी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं ब्रह्मा कुमारीज के, युवा प्रभाग की आप चेयरपर्सन हैं। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आपने अपना पूरा जीवन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अर्पित कर दिया। आप सोच सकते हैं 12 वर्ष की अल्प आयु, जिस ईश्वर के एक पल के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, उस ईश्वर के साथ रहने का सौभाग्य परम आदरणीय दादी जी को प्राप्त हुआ। 93 साल की युवा आप सबके सम्मुख हैं जो आप सबको संबोधित करने जा रही हैं। मैं कहूंगा रत्नाकर की रत्न प्रभा शिव शक्ति महान है, ये है मंजूषा दिव्य गुणों की, ज्ञान रत्नों की खान है ये आदरणीय दादी रत्न बहने जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिमान परम प्यारे, हम सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, आप सबको देखकर हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आप सभी इन आध्यात्मिक बातों को सुनने के लिए अपना इतना समय दे रहे हैं। इससे हम जरूर समझेंगे कि आपको भी आध्यात्मिकता के लिए अथवा उसको अच्छी रीत जानने की रुचि है। वास्तव में आध्यात्मिक का अर्थ, शब्दों का अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, जानते हैं ना, क्योंकि सब आज की दुनिया में तो पढ़े लिखे ही हैं। लेकिन जो अर्थ हम जानते हैं, हम अपने आप से पूछें, सचमुच उस अर्थ स्वरूप से हम अपने आप को चला रहे हैं? ये तो हम सब मानेंगे कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, जिस आत्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है ना बात, परंतु ये भी मानते हैं अगर आत्मा इस शरीर में नहीं होती तो शरीर काम करता, कर सकता? इसलिए हमें इस बात को अपने में जरूर समझना चाहिए कि हम संसार में रहते कितनी बातों को जानते हैं और कितना काम भी भिन्न भिन्न रीति से करते हैं, कितनी हमारे अंदर उम्मीदें ख्वाहिशें रहती है। लेकिन कभी ये सोचा कि जो आत्मा मैं हूँ वो हूँ कौन, कैसे हूँ और कैसी हूँ, सोचा है कभी? अपना ये शरीर, अपना नाम रूप, जिन्होंने हमें पैदा किया उन्होंने संबंध उन्होंने स्नेह, ये तो सब हम करते रहे, लेकिन हम इस शरीर में जो आत्मा है वास्तव में उसका कार्य क्या है? शरीर के सर्व कर्म इंद्रियों को जानते हैं, काम लेते हैं। कभी हमने अपने आप से अर्थात आत्मा से बात की है, अथवा कहें हम भगवान को मानते हैं, आत्मा का आत्मा सर्व आत्माओं की रचयिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना? लेकिन परमात्मा पिता, हम सबका पिता है ना, पिता का आदेश अथवा पिता की शिक्षा हम बच्चों के लिए क्या है? कभी ऐसा सोच हमारा चलता है? और अगर ये सोच हमारे मन में आ जाए, ये सोच भी हमें खुशी देगा, और खुशी के साथ साथ जब हम इसका पूरा वर्णन सुनेंगे तो उससे अंदर की हमें जागृति आएगी, तो वास्तव में सचमुच हम समझते हैं मैं ये करता और मैं कौन, तो हमें अपना नाम ही याद आएगा, जो नाम तो इस शरीर पर पड़ा। अगर मैं शरीर छोड़ देती हूँ तो मेरा नाम साथ चलता है क्या? तो मैं कौन हूँ, ये मैं कौन की पहेली, हम इसको ये बोलते हैं। जब हम पहले आए तो ये बातें सुन करके स्कूल में क्या नहीं पढ़ाई पढ़ी जाती है, पर ये मैं कौन, नाम धाम जो भी हमारे शरीर काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, जो शरीर के माँ बाप है, सब जानते हैं। लेकिन जो शरीर में के अंदर गुप्त है और गुप्त रूप से शरीर को चला रही है, वो मैं कौन हूँ और वो मेरा संबंध किसके साथ ऐसा जुटा रहे जिससे हमें स्वयं की नॉलेज यथारथ रीत में मिलती रहे अथवा हमारी जागृत हो। वो आप मेरे कहने से अथवा अगर यहाँ जो भी बातें सुनी है उससे आपको समझ में आया होगा, तो हम मानते तो है कि आत्मा शरीर के अंदर है, कार्य शरीर से कराने वाली आत्मा ही है। मन के अंदर सोचना भी अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर कुछ काम करेगा? तो हम अपने आप से पूछें, अगर सचमुच हम अपने को आत्मा समझ करके इस शरीर से काम कराएं, तो इसमें एक तो हमें परमात्मा पिता की याद बनी रहेगी, दूसरा हमारा अंदर का स्नेह परमात्मा से जुटता जाएगा, जिससे हमारे अंदर वे क्वालिटीज जागृत होंगी जो क्वालिटीज ओरिजिनल मुझ आत्मा में समाई हुई है। शरीर का जन्म होने के बाद हमें माँ बाप की पालना मिलती है, जो भी परिवार का संग होता है उसी संग से हम सब कुछ सीख करके आगे चलते हैं। वो तो संसार में रहने से ये भी चाहिए, पर वो तो हम सब करते हैं। लेकिन आत्मा जो स्वयं शांत स्वरूप है, हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो भल हम इन आँखों से नहीं देखते हैं, परंतु वो हम सर्व बच्चों पर मेहरबान है। कभी भी हम अगर कोई ऐसी बात दिल में होती है, अगर सचमुच हम परमात्मा को पिता मान करके और उसी स्नेह से याद करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे अच्छे विचार आते हैं जो भी बात हमारे सामने आएंगी उसको हम सहज रीति से हल करते ही जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा कहना यही है, भले संसार में रहते हमें संसार के रीति से चलना है, लेकिन स्वयं को तो भूल नहीं जाना है ना। जो कराने वाली शक्ति इस शरीर से काम कराती है, जिसके लिए मानते हैं परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर भेजा है, किस लिए मानते तो हैं? अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म कौन से? सिर्फ ये संसारिक कर्म नहीं, परंतु हमारा मन बुद्धि, मन ऐसा एकाग्र रहे जो बुद्धि के अंदर श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, सर्व के प्रति भावनाएं। हम सब एक पिता की संतान। देखो हम सब इधर बैठे हैं, संबोधित करते हैं, हम सब एक पिता की संतान है। कह तो दिया, समझो मान भी लेते हैं, लेकिन हमारे कर्म, हमारा व्यवहार किस प्रकार से चलता है? आप कहेंगे क्या सबसे एक जैसा व्यवहार थोड़ी चल सकता है? बात राइट है, एक जैसा नहीं, पर वो हमारी दृष्टि, वो बात हमें याद रहे। जैसे अपने लौकिक संबंध याद रहते हैं, इससे मेरा ये संबंध है, इससे ये संबंध है, इससे ये संबंध है, उसी रीति चलते हैं। तो हमारा हम कौन, अर्थात मैं कौन? यहाँ बैठे हो, पूछा जाएगा तो कहेंगे मैं आत्मा, क्योंकि सुन रहे हैं और समझ में आ रही है। पर मैं आत्मा जब मानती हूँ परमात्मा की संतान हूँ, तो अपने से पूछूं, मैं अपने परमात्मा पिता की जो क्वालिटीज जानती हूँ, मानती हूँ या सुनती हूँ, वो क्वालिटीज मेरे में कितने तक आई है? हमेशा कहा जाता है ना, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो हमारा बाप सर्वशक्तिमान, आत्मा परमात्मा, परमात्मा हम सर्व आत्माओं के पिता, ऐसे है ना, मानते हैं ना? पिता का हम बच्चों को क्या कहना है? अपने को पहचान, और उस पहचान से सर्व को वही स्वरूप मान, और अपना व्यवहार ऐसा स्नेह संपन्न जैसे हम चाहते हैं हमारे से और स्नेह से चले। कभी कोई ऐसी बुरी बात हम अपने प्रति नहीं सुनने चाहते हैं, ऐसे हम भी कभी किसके लिए न बुरा सोचे न बुरा बोले। कभी कभी अपने मतलब से हमारे से ऐसे हो भी जाता है, लेकिन उसको हम अंदर ही अंदर महसूस करते और अंदर ही अंदर हम अपने बाप से उस भूल को क्षमा करा कर ले, तो हमारा जीवन आगे के लिए बहुत अच्छा बनेगा, स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए ये मिसाल हो जाएगा। अर्थात दुनिया में रहते सब कुछ करते, लेकिन अंदर से हमें याद है, देखो हम जब बड़े हो जाते हैं तो भगवान के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं ना, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, ये करते हैं, लेकिन सब करते हुए भी जो अपनी प्रवृत्ति बनी हुई है, जैसे करते हैं वो ही करते रहते हैं, वो बातें समझ ली क्योंकि बुद्धि है, लेकिन जो समझ ली उसी अंदर की बात को, जो मैं अंदर हूँ, जैसे परमात्मा गुप्त है, हम समय पर जब दुख आता है तो याद करते हैं ना, तो कम से कम उस याद से धीरे तो आ जाता है। इसी प्रकार से हम दुनिया के व्यवहार में रहते ये अपनी अंदर की बात कि परमात्मा की संतान मैं आत्मा हूँ, जो मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाने आती, तो हमारे में क्वालिटीज परमात्मा सर्व के रहम दिल है, हमारी भी क्वालिटी ऐसी बन जाए, हमारे अंदर रहम भावना अर्थात स्नेह भावना, सर्व से स्नेह संपन्न चलते रहें, प्रेम से बोली बोले और उन्हों को चलो कोई बात अच्छी लगती या नहीं लगती, हम समझते हैं हमारे में उसको वो बात समझाने की हिम्मत है, हम उसको प्रेम से समझाएं और प्रेम से समझाने से कोई भी उस बात को स्वीकार कर लेता है, ये तो हमारा अनुभव भी है। इसलिए दुनिया में रहते अपना अपना कार्य करते, परंतु हमें ये समझते सब है ये शरीर नाशवंत है, पर शरीर के बिना भी तो कुछ नहीं है, शरीर है तब तो हम बोल सकते हैं, आंखें हैं तो देख सकते हैं, ये सब शरीर के साथ कार्य करते हैं, लेकिन जैसे शरीर की सर्व बातों को समझ के उसको संभालते हैं, वैसे हम आत्मा का संबंध परमात्मा से जुटा के रखें और उससे जो परमात्मा की शिक्षाएं हम आत्माओं के लिए हैं उनको धारण करते और सबसे ऐसे स्नेह से व्यवहार करें जैसे हम भगवान को याद करके और उस समय के लिए कितने हल्के कितने खुशी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम स्वयं को ऐसे बनाते जो हमारे से सबको ऐसी फीलिंग आए सचमुच लगता है ये कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु इनमें ऐसे गुण है जो स्वयं भी गुणवान और हमें भी उन गुणों का अनुभव होता है, ऐसे हमारी भी जीवन बन जाए तो हम दुनिया में रहते अनेक प्रकार के दुखों से छूट जाएंगे, नहीं तो दिन प्रतिदिन हम संसार की हालत देखते जा रहे हैं, ये भी तो समझते हैं आखिर तो ये दुनिया इतनी चलती आ रही है, क्या सदा ऐसी थोड़ी चलेंगी, ये भी तो हमने सुना है कभी यही इसी धरती पर स्वर्ग था, स्वर्ग क्या था, स्वर्ग में ऐसे ही हम ही आत्माएं होंगी कब, भले जानते नहीं, अब फिर से जब सत्युग बीता त्रेता बीती द्वापर बीता अभी कलयुग है, कलयुग के बाद क्या होगा, फिर से दुनिया रिपीट होंगी ना, तो अब फिर हम अपने में ऐसे गुणों को जागृत करे जो आने वाली नई दुनिया के अंदर हम अपना वह ऊंचा पाठ बजा करके अपनी जीवन ऐसी शुद्ध और सिंपल बनाएं जो जो हमें देखे उनको लगे देखो आज की दुनिया में भी ऐसे कम नहीं है जो अपने को न पहचाने। हमें स्वयं की नॉलेज, मैं वास्तव में शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए जीवन में रहते भी मुझे कोई अशुद्ध कर्म, कोई के प्रति अशुभ भावना, कोई के प्रति अशुभ भूल, ऐसे हमें कभी नहीं करना है। हमें सदा शुभ बोल बोलने हैं और सबसे स्नेह संपन्न व्यवहार करके स्वयं भी खुश और अपने से सबको हम खुश करते रहें, यही हमारी जीवन हमें सुखमय अनुभव होंगी। और नहीं तो अगर हम भी किसको दुख देंगे तो जरूर है वो उसका वैर तो लेंगे। आज के दुनिया में तो सब बड़े दुनियावी रीति से होशियार है और कोई किसको थोड़ी छोड़ता है, इसलिए हमें भी पहली अभी ये शिक्षा मिली हुई है इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। जो मैं आत्मा वास्तव में शुद्ध हूँ, परम आत्मा की संतान हम आत्मा है। आत्मा ने शरीर धारण किया है, जैसे हमें परमात्मा के प्रति प्यार है तो सब परमात्मा के बच्चे सबके तरफ हमारी वो नजर बनी रहे और उसी नजर से हमारे बोल में भी फर्क आएगा, हमारे व्यवहार में भी फर्क आएगा। और ऐसा जब हम अपना अंतर देख करके वो व्यवहार करेंगे तो हम स्वयं भी सदा खुश, न मैं कोई से नाराज होंगी, न कोई मेरे से नाराज होगा, न मुझे कोई प्रकार की आशा जागृत होंगी, न हम उस आशाओं को पूर्ण करने के लिए मजबूर रहेंगे। इसलिए सदा हम अपन को सर्व शक्तिवान बाप की संतान मान करके मैं आत्मा जो वास्तव में शुद्ध हूँ, उस शुद्धि को हम जानते हैं, मानते हैं और ऐसे जो चर्चा करते हैं उन्हों के प्रति हमें मान रहता है, इसलिए हम अपने जीवन में वो क्वालिटीज जागृत करते हुए अपने ऐसे शांति और सुख में कार्य करते रहें। लेकिन शरीर में रहते हमें ये स्मृति रहे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे कोई भी ऐसा अशुद्ध कार्य, अशुद्ध विचार इस अपने जीवन में नहीं करना है जिसकी भोगना मुझे कोई न कोई रूप में भोगनी पड़ेगी। इसलिए अगर ऐसी बात हमने अपने से पक्की कर ली तो जरूर है हम स्वयं भी खुश रहेंगे और हमारे से जो भी हमारे संपर्क में आएंगे वो खुश रहेगा। और जैसे जैसे हमारा लौकिक परिवार भी बढ़ता जाता है तो उनमें भी वो संस्कार पड़ते जाएंगे, तो जैसे हम निमित्त बनेंगे अपने परिवार को भी ऐसा बना करके और दुनिया में सदा हम शांति प्रेम और सुख से हम भी रहें और अपने से सबको शांति और प्रेम का अनुभव कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ आए हैं यही बातें सुनने के लिए और यहाँ ही थोड़ा थोड़ा इसको अभ्यास करते रहना, क्योंकि दो तीन दिन तो आप रहने वाले ही होंगे, इसलिए यहाँ ऐसी वृत्ति, ऐसी दृष्टि, ऐसा व्यवहार थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास आगे के लिए हमें मदद करता रहेगा और आखिरी हम अपने परमात्मा पिता को यथार्थ रीति पहचान उन गुणों से स्वयं को भरपूर कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक।
बहुत बहुत शुक्रिया दादी जी। मैं कहूंगा कि हर शब्द एक शास्त्र था, हर वाक्य में गहन मर्म था। आपका आशीष मिला हमें, ये हम सब के जन्मों का सत्कर्म था। इसलिए जोरदार एक बार और तालियों से दादी जी का शुक्रिया अदा करेंगे। दादी जी ने हमें जो सीख दी है, शिक्षा दी है कि ना हम बुरा सोचेंगे ना बुरा बोलेंगे, अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, प्रेम से रहेंगे, संसार को स्वर्ग बनाएंगे। जो समझते हैं कि दादी जी की शिक्षा को हम अपने जीवन में लाएंगे, जरा एक हाथ से अपना समर्थन दादी जी को दिखाएंगे कि हाँ दादी जी हम इस सदमार्ग पर अब जरूर चलेंगे। दादी जी सभी ये चाहते हैं कि योग करेंगे जरूर। दादी जी का आशीष आप लोगों के साथ है, अवश्य हम अपने जीवन को इस मार्ग पर चलकर सुख और शांति से परिपूर्ण करेंगे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शंकर नारायण स्वामी जी को, जो मेंबर हैं एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदरणीय शंकर नारायण स्वामी जी।
ओम शांति। रेस्पेक्टेड राजयोगिनी दादी जी, रेस्पेक्टेड बेके मीरा जी, रेस्पेक्टेड कमलेश जी, राजू भाई जी, प्रताप डॉक्टर प्रताप मीरा जी और माय कोलीग चौकिया जी, मेरा नाम शंकर है। मैं एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी में मेंबर बोल के काम करता हूं। हमारा कर्तव्य यह है कि आपका जो एयरपोर्ट्स में जो चार्जेस लगते हैं यूजर डेवलपमेंट फी, वो कितना होना चाहिए वो हम फिक्स करते हैं। इधर मैं पहले बार आ रहा हूं ये ब्रह्म कुमारी सेमिनार में। ये जो ट्रेवल और टूरिज्म का स्पिरिचुअलिटी जो हम बात करते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसा होता है कि इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, जो सर्विस देते हैं और हम लोग सर्विस लेते हैं। हम पहले बात किए हैं कि सर्विस देने वाले हैं वो कितना टेंस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं और उनको ट्रेनिंग होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, सब लोग ने बताया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम सब लोग ने कल और आज में 7-8 सेशंस में इतना सीखा है, एज पैसेंजर्स और यूजर्स ऑफ द सर्विस हम ये सब उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रेवल और एस्पेशली वेन यू कंसिडर द ट्रेवल, अगर हम ट्रेन में जाते हैं कभी भी हम आजू बाजू वाले से कुछ बात नहीं करेंगे, स्पेशली इफ यू ट्रेवल इन AC 2 टायर और AC 3 टायर। हम अपने मोबाइल को लेके बैठेंगे और किसी से स्माइल भी नहीं करेंगे। हमको पहले आज कल ये सिखाया गया कि पहले आप हाउ आर यू पूछो बाजू वाला से, स्माइल करो उनसे, अच्छा है क्या पूछो, वो उससे हमको कितना फायदा मिलता है। मैं एक अनुभव कल का ही बात कर रहा हूं। मैं जब परसों दिल्ली से अहमदाबाद राजधानी से इधर आ रहा था, मेरा सामने एक फैमिली, छोटी सी फैमिली बैठी थी, एक हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं। मेरे को बच्चे बहुत प्यारा लगा। मैं अपने आप पहले वो सब कोई बात करने के पहले उनसे पूछा व्हाट्स योर नेम, आप कैसे हैं। मैं इतना ही दो शब्द कहा, उसके बाद वो पूरा फैमिली ने मेरे को इतना रिस्पेक्ट दिया। वो वाइफ ने बोला ये आप बच्चे को बोलते हैं ये आपका दादू जी है करके, दादू जी करके उन्होंने इतना बोला कि पूरे सफर में मेरे को भी खुशी मिली, उनको भी खुशी मिली। मैं उनको पहले कभी देखा नहीं था, वो लोग पाहलपुर जाने वाले थे, मेरे को इधर उतरने का था। जब मैं इधर अबू रोड में उतरने के लिए आया, वो सब लोग उठे, उस 5-6 बजे था, फिर मेरे को सब बोले यू नो बेस्ट विशेस ऑल दिस थिंग. सो आज भी मैं उनका ख्याल करता हूँ, उनका ये रखता हूँ. वैसे अभी एक चीज हम आसानी से कर सकते हैं, अभी कभी भी आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, लेट अस यू नो इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द नेबर, विश देम गुड लक एंड दे विल ऑल्सो विश अस गुड लक. इन तरह कभी कभी झगड़ा होता है, सामान इधर मत रखो, ये मेरा बर्थ है, ये तुम्हारा बर्थ है, वो सब झगड़ा करने में से सिंपल ये इंट्रोडक्शन किया तो बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही दीदी जी ने बताया एयरपोर्ट्स में कैसा पायलट्स ने झगड़ा किया, तो मैं उसको टच नहीं करता हूँ. कैसा आप रोड रेज देखते हैं, कभी सिग्नल तोड़ते हैं, सिग्नल में आगे पीछे आते हैं, इतना झगड़ा होता है, कभी कभी मर्डर भी हो जाता है. ये सब अगर स्टॉप करने का है तो हमको जैसा करने का, जैसा हमारा राजू भाई ने बताया कि डिले होगा, कुछ हमारा प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा, फिर भी हम इधर ब्रह्म कुमारी के इनके सेमिनार से जो भी हमने हमको सीखने को मिला है उसको अगर हम इम्प्लीमेंट किए तो हम भी खुश होंगे, हमारे बाजू में जो भी लोग हैं उनको भी एक खुशी हो जाएगी. और मैं एक दो शब्द अबाउट द सेमिनार आई वांट टू से, आई वुड से दैट इट इज वन ऑफ द एक्सेलेंट सेमिनार्स आई हैव अटेंडेड. ये जो इधर का इनका जो अरेंजमेंट है, द मेथड ऑफ यू नो द ऑर्गेनाइजेशन, द पैटर्न ऑफ द सेमिनार, इसमें ग्रुप डिस्कशन था, रोल प्ले था, यू नो इन बिटवीन एंटरटेनमेंट, यू नो द वे इट इज मेड सो दैट पीपल डोंट गेट बोर्ड. एट द सेम टाइम अल्टीमेट मैसेज इज पास्ड ऑन टू यू. एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस विल नो दैट हम अब से कभी भी दूसरे को गलती को नहीं देखेंगे, हम स्वयं हमको चेंज करने को कोशिश करेंगे. ये तो आई एम श्योर 100% दैट ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर विल अडॉप्ट इट. सो इन दैट वे आई वुड से दिस सेमिनार इज वेरी वेरी सक्सेसफुल. मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपने वो पाया है, क्योंकि मेन थिंग इज क्या है, हमारा मैसेज लोगों को जाना चाहिए. बहुत सारे लोग, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, मैं भी एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई, आई सी मेनी पीपल आर फ्रॉम मुंबई हियर. वो सब लोग मुंबई में तो इतना होता है, लोकल ट्रेन में जाना पड़ता है, इतना टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है. हमारे लिए बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है कि इधर हमको ये सब सीखने को मिला है कि हाउ टू ट्रीट अदर्स. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज दादी जी ने जो हमको भी बताया हमारा स्वभाव कैसा बदलने का, हम परम पिता का, परमात्मा का, हम हमारे उनके हम सब बेटे हैं, बेटी है, तो हम उनका आदर करने के लिए हमारा क्वालिटीज को कैसे चेंज करने का है वो सब बताया है. ये सब मैं भी, ये ऐसा नहीं है कि ये दो दिन हम सेमिनार में आए, कुछ सुने, कुछ उसमें समथिंग वी अंडरस्टूड एंड देन आफ्टर गोइंग वी विल फॉरगेट इट. आई अश्योर यू दादी जी, और हम सब लोग इसको ध्यान से फिर से और भी पढ़ेंगे और इसमें और डीप नॉलेज यू नो we'll try to get. And also if there is another opportunity, I like to attend such seminars of Brahma Kumari. And again one more word of appreciation for them, like either jo bhi volunteers hai wo sab apne aap achhi tarah se kaam karte hain. It's a wonderful experience. There is no supervisor, there is no boss, there is no you know subordinate. Wo itne acche kaam kiye hai sab log. Main ek do udaharan bataunga. आज जब खाने के बाद हम उधर से रिटर्न आने को थे, कोई कारण से एक बस गई और बस आने को जा रही था, धूप था. अपने आप एक वॉलंटियर ने एक फोन किया फटाफट, अरे जल्दी भेजो गाड़ियां, दो दो लोग खड़े हैं. ऐसा कोई करते है क्या? मैं एक वॉलंटियर को देखा, उसका नाम भी नहीं जेवन था, बट मेरा हाथ से मैं बोलता हूँ उसको ब्लेसिंग्स दिया, ये इतना अच्छा यू नो काम करता है. वैसा यू नो सिमिलरली वन मोर स्मॉल एक्सपीरियंस, रूम में मेरा कुछ फ्लश में कुछ प्रॉब्लम था, मैंने आज सुबह सिंपली वो उधर नोट में वाइकुंठ, आई कैन टेल द नेम ऑल्सो वाइकुंठ में, सिर्फ नोट में नोट किया है. दोपहर को मैं जब गया ठीक था, मतलब यू नो इतना इवन इन 4-star 5-star होटल्स यू डोंट गेट यू नो दैट टाइप ऑफ यू नो प्रॉम्प्ट सर्विस. ये सब इतना प्यार से हमको खाना खिलाते हैं और यू नो दिस आई थिंक दैट इट इज यू नो वन ऑफ द पीपल शुड लर्न, इट्स लाइक अ रोल मॉडल फॉर अदर्स हाउ टू यू नो कंडक्ट सेमिनार. एंड आई ऑल्सो हैव टू थैंक पीयूष जी, अभी नहीं है इधर, बट पीयूष जी ने मेरे को यू नो बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग माई ऑफिस करंटली इन दिल्ली अपोजिट टू लोधी रोड, उधर पर्सनली आके गिरिजा जी और पीयूष जी ने हमको आके बोला है, हम इमिडिएटली एक्सेप्ट किया है और इधर आके मेरे को बहुत भाग्यशाली यू नो समझता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला, सबको प्रणाम। एंड द सक्सेस ऑफ द सेमिनार इज दैट वी शुड यू नो इम्प्लीमेंट इट इन अवर डे टू डे लाइफ। थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया शंकर नारायण स्वामी जी, बहुत सुंदर अनुभव आपने रखे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ एक परिवार है, और यदि ऐसा ही परिवार हम सारे संसार को बना लें तो संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो क्यों ना यहाँ के सीख को हम वहां जाके जरूर इम्प्लीमेंट करें और सारे संसार को स्वर्ग बनाएं, जैसे हमारे ईश्वर पिता हमसे चाहते हैं। हमारे अतिथियों को अब आदरणीय दादी जी और मीरा दीदी सौगात प्रदान करेंगी। मैं बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो ईश्वरीय सौगात हमारे अतिथियों के लिए जो मंचस्थ हैं उन्हें प्रदान करें, और आप सबको भी ईश्वरीय सौगात प्रदान की जाएगी, इसीलिए आप सब भी यहाँ विराजित रहेंगे। ये ईश्वरीय सुंदर परंपरा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सौगात के साथ साथ वोट ऑफ थैंक्स के लिए बीके रविन्द्र भाई को, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सैट विंग के। आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवाओं में तत्पर रहते हैं। मैं रविन्द्र भाई से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें।
ओम शांति। कहा जाता है चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक आगे तो एक पीछे। पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वालों का अपमान है, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में ये सब बदलने वाला है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि हम भी इस माध्यम के कारण हम भी कुछ ना कुछ बदलने वाले हैं। तो आज के इस उद्घाटन सत्र जो कि आध्यात्मिकता का क्या रोल है हमारे इस ट्रैवल और टूरिज्म में, ये आप हर पल महसूस कर रहे हो और मैं भी खुद ये महसूस कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करने के लिए खास आया हूँ कि ये जो कार्यक्रम की प्रेरणा हमें परमात्मा की ओर से मिली, और उस परमात्मा ने ये कार्यक्रम के लिए आप सभी को भी आमंत्रित करने के लिए सब कुछ हमें प्रेरणा दी। तो इसलिए मैं सर्वप्रथम परमपिता शिव परमात्मा का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में हमारी आदरणीय प्रातस्मरणीय प्रातवंदनीय दादी जी पहुंचे और हम सभी को इतनी सारी आशीर्वचन हम लोगों के लिए कही, तो इसलिए दादी जी का भी हम सभी जोरदार करकल ध्वनि से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस विंग की हमारी आदरणीय मीरा दीदी जी ने हम आप सभी को भी निमंत्रण देके यहाँ बुलाया, आप सभी के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। धन्यवाद और शुक्रिया। दादी जी कह रही है कि दादी जी अभी हम सभी को आशीर्वाद देकर सभी हाथ ऊंचा करके दादी जी हमारे से प्रस्थान कर रही है, क्योंकि दादी जी के और भी आगे कार्य है। तो इसलिए दादी जी हम सभी को हाथ हिलाते हुए, हम दादी का आशीर्वाद लेते हुए, हम सभी दादी को बहुत 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 दिल से दुआएं भी और दादी थैंक्स भी कि आप हमारे बीच में आए और हमें खुशी दी।
देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले,
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले
देते चले